इतिहास इतिहास दिक् एवं काल के आयामों में आबद्ध इतियों प्रमुख घटनाओं का विशिष्ट ज्ञापक कार्य संपत्त स्वरूप ही ऐतिह है। सृष्टि के सर्जन विसर्जन जातियों के उत्थान पतन चुनौती प्रत्युत्तर व्यष्टि समष्टि के वैभव प्राभव का कारण का कारणात्मक तथा परिणात्मक विश्लेषण ज्ञान के विभिन्न विधाओं के माध्यम से किया जाता है, परंतु काल के नाभिक बिंदु से विविध व्यासों से विनिर्मित वृत्तों की इतियों अर्थात गतिविधियों एवं प्रघटनाओं का अर्थ अवधारणा परिभाषा में सत्ता प्रज्ञापक ही इतिहास है। भारतीय इतिहास का अध्ययन करने वालों के लिए यह विशेष ध्यातव्य है कि आयातित हिस्ट्री शब्द की अपेक्षा भारतीय वाङ्मय में प्रयुक्त इतिहास शब्द के धात्वर्थ मूलार्थ का अभिज्ञान सर्वप्रथम प्राप्त किया जाए, क्योंकि अंग्रेजी भाषा के शब्दों की व्युत्पत्ति अव्याकृत है। संस्कृत व्याकरण दर्शन की ऐतिह्य परंपरा शाब्दी अर्थात नाम पदार्थी अर्थात रूप को भी व्याकृत करने में समर्थ है। इतिहास शब्द का पुष्कल प्रयोग प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त है। संस्कृत व्याकरण के दार्शनिक यह स्वीकारते हैं कि इति जोड़ हास जोड़ आस शब्दों से ही इतिहास शब्द की सिद्धि होती है। इन तीनों शब्दों के सम्यक ज्ञान से ही इतिहास शब्द की स्पष्ट अर्थावधारणा हो सकती है। अतः इतिहास के त्रिक का क्रम से विशेष उत्पत्ति अवधेय है। ई भाषिक पुरातत्वविदों का अभिमत है कि वैदिक भाषा के शब्दों का उद्भव विकास एकाक्षरा से द्विअक्षरा की ओर हुई। स वा एकाक्षरा द्वैक्षरान्नैव उद्विकास के क्रम में एकाक्षरा ही द्विअक्षरा बहुअक्षरा से शब्दों का निर्माण हुआ है। भाषिक स्तरों के अभिज्ञान से इतिहास शब्द के इति में ई धातु गति अर्थ में किसी गतिविधि क्रिया प्रघटना से निश्चित रूप से संबद्ध है। उपलक्षणात्मक दृष्टि से गति कर्म को सामान्यतः क उत्क्षेपण ख अवक्षेपण ग आकुंचन घ प्रसरण अंग गमन च ज्ञान तथा छ प्राप्ति रूप में स्वीकार किया जाता है। ई इतिहास शब्द के निर्माण प्रक्रिया के ऐतिहासिक अध्ययन से इति शब्द में विद्यमान ई अर्थात इन धातु में शब्दाक्षर का अर्थ विस्तार अपने गत्यात्मक विविधता से अवधेय है। ई एकाक्षर पद से गत्यर्थक प्रयोग भारोपीय भारतेरानी वैदिक संस्कृत संस्कृत पाली प्राकृत आदि भाषाओं में आद्यवधि प्रयुक्त है। पहला गमन अर्थ नए इत्यावृतम, दूसरा आगमन अर्थ पुरस्तादेति मायया, तीसरा निर्गमन अर्थ त्वदेति द्रविणम वीर पेशा, चौथा उधर्वगमन अर्थ अयोम विषाम घातुरेति, पांचवा अनुगमन अर्थ बधुरियाम पति पतिम क्षयन्ति नयति, छठा प्राप्त्यर्थ वितरतराने अप्रिय रेति, सातवा वर्तते अर्थ यस्मिन ब्रह्मराजिन पूर्व एति, आठवा अभिगमन अर्थ अयम सूरीरथि पुच्छमान एति सायन, नौमा अष्ट अधिष्ठान अर्थ तान्येव पंचम भूतानि पुरण्यपेति भागसः, दसवा ज्ञान अर्थ जल निधि भीउरतः समेत्य मायायम सर्वे गत्यार्थ इति जयमंगल, अर्थात जयमंगल की टीका के अनुसार सभी गत्यर्थक ज्ञानार्थक है। जहाँ जहाँ जिस जिस शब्द पदार्थ में बुद्धि की गति होती है वह ज्ञान है। इग्रहमा अध्ययन अर्थ में अधीते अर्थात अधीयति, बरहमा में स्मरण अर्थ अध्ययति, तेरहमा ई से निष्पन्न, इख इंख इग इट आदि धातुएं भी गत्यर्थ हैं। तेरह ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में भी ई धातु गत्यर्थक रूप को व्यक्त करती है। क भारपोई भाषाओं में एई बराबर ई गमन अर्थ में, ख लुथानी भाषा में एई एयुनो ई गतिकर्मा, ग अवेस्ता में आ ए इति इक्वल टू ई बराबर इति बराबर गमन बराबर गति, घ पुरानी पर्शियन भाषा में एतई अर्थात ई एतिय गति गमन, अंग ऋग्वेद में एति री में इनोति गति, च प्राकृतिक ई सक गति ज्ञान, छ कुमार पाल चरित एई आदि। मैक्स मूलर का मत है कि संस्कृत भाषा के ई को यूनानी ए से तुलना की जा सकती है, क्योंकि सभी ग्रीक शब्द संस्कृत भाषा के सभी मैक्स मूलर का मत है कि संस्कृत भाषा के ई को यूनानी ए से तुलना की जा सकती है क्योंकि सभी ग्रीक शब्द संस्कृत भाषा के ई की भांति ए से उत्पन्न हैं, परंतु मैक्स मूलर की यह तुलना सायास है, स्वाभाविक विकास नहीं, क्योंकि भारोपीय भाषा और लिपि में वर्णमाला क्रम से ए बी सी डी ई एफ के उच्चारण में ई का उच्चारण संस्कृत के ई के समान होता है। कालांतर में किसी अन्य वर्ण के साथ संयुक्त होने पर ई के उच्चारण में स्वेच्छाचारिता के कारण एस उच्चारण होने लगा। वस्तुतः संस्कृत के ईड का विकास ईडी में हुआ है। प्रयुक्त भाषाओं में भी ई धातु का ही विकास विकार गति गमन अर्थ में विद्यमान है। ई धातु का ही विस्तार आय अज इत ऐति ए आदि भारपोई भाषा में गति अर्थ को सिद्ध करता है। अतः ई धातु गति अर्थ से किसी क्रिया घटना प्रघटना से निश्चित संबद्ध है। ई गति अर्थ के साथ ती शब्द के साथ संयुक्त होकर इतिहास शब्द में किस प्रकार परिवर्तित विकसित होता है उसकी ओर अवधान आवश्यक है। ती व्याकरण दर्शन के अनुसार ती अर्थात कितन एक प्रत्यय है, प्रत्यय क्रिया का साधन है, ती प्रत्यय भी गत्यर्थक है। तिड में तीस त आदि नौ प्रत्यय प्राप्त होते हैं। इनमें पहले तीनों का मूल त है, त से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय कृत त कत गत त्वत गतवान ती कितिन गति आदि अनेक क्रिया रूपों में प्राप्त होता है। किसी धातु प्रकृति शब्द की सिद्धि प्रत्यय से होती है। इतिहास शब्द की प्रकृति ई मूलक अर्थात गत्यात्मक है। इतिहास का प्रथम पद इति है जिसका प्रत्यय ती भी गत्यर्थक है। इति एकाक्षरा से द्व्यक्षरा शब्द विकास प्रक्रिया में ई जोड़ ती अर्थात कितिन प्रत्यय से इति शब्द निष्पन्न है। यह ध्यातव्य है कि शब्द की मूल धातु ई है, ई एकाक्षरा है और ती प्रत्यय के संयोग से द्विअक्षरा होकर इति के रूप में परिवर्तित विकसित हुई। इस परिवर्तन के कारण इति स्वयं में एक स्वतंत्र एक निश्चित अर्थ व्यक्त करने में समर्थ हुई। व्याकरण शास्त्र के विकास क्रम में गत्यर्थक इति का अर्थ स्वरूप स्थिर होकर अव्यय अविकारी हो गया। रूढ़ अर्थ में ऐसा अर्थ में इति व्यंजित होने लगा। क्षण क्षण प्रघटित परिवर्तनों के मूल में एक अपरिवर्तनीय अव्यय अविकारी तत्व अवश्य है। वस्तुतः जो स्थिति है वही गति भाव को प्राप्त करती है। स्थिति और गति दोनों सापेक्ष भाव है किंतु एक दूसरे के अविनाभूत हैं। इसी प्रकार इति शब्द का प्रयोग व्यवहार एक शब्द का रूप धारण कर एक निश्चित अर्थ का प्रदाता बन गया, किंतु अव्यय रूप में भी इति अपने नाभिक अर्थ गति गमन क्रिया प्रघटन में प्रायः किसी के कथित वेदिता वेदित कृत कृति को यथा तथा जैसा का वैसा ही अविकल अव्यय अविकारी रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इति एक अकेला शब्द है जो शाब्दी पदार्थी स्वरूप को व्याकृत करने के लिए प्रयुक्त किया गया कोई प्रतिपादिक जो अपने गत्यर्थों को संकेतिक करने के लिए कर्तृ कारक में प्रयुक्त होता है। व्याकरण दर्शन के अनुसार प्रकृति ई तथा प्रत्यय ती के संयुक्त मिथुन भाव से ई जोड़ ती का संयोजन जब अद्वैत तत्व इति में रूपांतरित होकर सृजनात्मक श्री गति करती है तब किसी प्रसूत प्रघटना को यथातथ संवेदित करती है। यही प्रक्रिया इतिहास में द्रष्टव्य है। दैवी प्राकृतिक तथा मानुषी इति या अर्थात गतिविधियां कृति रूप में कृतित्व होकर इतिहास बन जाती है। वैदिक काल से इति अपने अव्यय पद में निश्चित अर्थ यथा तथा वैसा का वैसा ही अभिव्यक्ति करती है। अतः इति विशिष्टाद्वैत होकर प्रघटित एवं कथित विचार वस्तु को यथावत प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को इतिहास कहा गया है। आचार्य दुर्ग ने इसीलिए लिखा है कि इति ही एवं आसित इति यह कथ्यते स इतिहास इतिहास ह इति ह आस से सिद्ध इतिहास शब्द में ह एक महत्वपूर्ण पद है। वैदिक इति साहित्य में प्रयुक्त ह शब्द के समान कील खल्लू प्रसिद्धम तथा निश्चय आदि अर्थों को प्रकट करता है। संस्कृत व्याकरणानुसार ह पद अव्यय है तथा अभिकारी होने के कारण अपने अर्थों को भी निश्चित अव्ययी भाव में अव्यंजित करता है। ह एक बलबोधक निपात है और अपने पूर्ववर्ती शब्द पर बलपूर्वक निश्चित यथार्थतः सत्यतः सचमुच वस्तुतः आदि अर्थ का घ्योतक है द्योतक है। यह अवधेय है कि ह का पूर्ववर्ती शब्द इति कोष्टक में इति जोड़ ह है जो किसी गतिविधि गत्यर्थक कथित लिखित कृत का यथा तथ्य और अविकल रूप को निश्चय अर्थ में प्रमाणित करता है। व्याकरण दर्शनानुसार ह अर्ध स्वर तथा अर्ध व्यंजन है। ह अंतस्थ उष्म है तथा कंठय उरस्थ है। ह विविध शक्तियों से संपन्न होने के कारण अपने पूर्ववर्ती शब्द को निश्चित घटित होने को सिद्ध करता है एवं पश्चवर्ती शब्द के अर्थ को भी परिवर्तित करने में समर्थ है। ह निश्चित अवश्य अर्थ देता हुआ इति के साथ संयुक्त होकर इति अव्यय बन जाता है। अमर का वचन है कि प्राम्परयो पदेशे स्याद ऐतिह्यम इति अव्ययम् अर्थात इति अव्यय है और प्राम्परयो पदेश में अर्थ के अर्थ में ऐतिह का समानार्थी है। जैन व्याकरणचार्य हेमचंद्र ने ऐतिह को स्पष्ट करते हुए पारंपरिक उपदेश को पुरातनी वार्ता कहा है। वार्तेतिह्यम पुरातनी वार्ता इतिह इति निपात समुदाय उपदेश परम्परे वर्तते इति इत्येव ऐतिह ऐतिह ऐतिह्यम ऐतिह्यम ऐतिह्य इति जोड़ ह शब्द में स्थित ह निश्चित यथार्थ अर्थ को द्योतित करता है। ऐसा वैसा निश्चित अवश्य गतियां प्रघटनाएं आस थी। इसी अर्थभूमि का आलोचना तित्तिर मुनि के आरण्यक में किया जा सकता है। गौतम अपने न्याय शास्त्र में ऐतिह्य इतिहास को एक प्रबल प्रमाण मानते हैं क्योंकि ह निश्चित अर्थ देने वाला यहाँ विद्यमान है। कथित प्रघटित लिखित निश्चित ह रूप से थी इसीलिए इति जोड़ ह आस बराबर इतिहास का अर्थ विकसित हुआ। की निश्चितता ऐसी गतियाँ थी। इसी प्रकार ह के अर्थ को स्पष्ट करते हुए चरक ने भी लिखा है कि अथ ऐतिह्यम ऐतिह नाम आपतो पदेशोम वेदादि अर्थात आप्त अर्थात ऋषि अर्थात अधिकृत विद्वान द्वारा वेदादि का उपदेश वचन ऐतिह इतिहास है। चरक मुनि के अनुसार ऐतिह्य एक हेतु है जिसके द्वारा यथार्थ तत्व की उपलब्धि होती है। हेतु को न्याय दर्शन प्रमाण करण लिंग मानता है, अतः इतिहास शब्द में विद्यमान ह पद निश्चित रूप से प्रघटित गतियों को सिद्ध करता है। भारतीय इतिहास दर्शन के अध्ययन में यह विशेष ध्यातव्य तथ्य है कि शब्दों की व्युत्पत्ति का ज्ञान होना परम आवश्यक है। इतिहास शब्द के निर्माण में प्रत्येक पद सार्थक है। हिस्ट्री शब्द में कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो ह का समानार्थी हो या जो प्रघटित तथ्यों को निश्चित रूप से प्रमाणित करता हो। असह इतिहास शब्द का अंतिम पद इति जोड़ ह जोड़ आस भूतकृत का बोधक है। यद्यपि आस भी एक पृथक धातु है किंतु आस का मूल अस है। अस अदादिगण की पर समयपदी धातु है। इसका अर्थ भू अर्थात सत्यायाम भूवि का बोधक है। भगीरथ प्रसाद त्रिपाठी ने अपने पाणिनीय धातु पाठ समीक्षा में भू धातु को भारूपीय तथा भारतीय आर्य भाषाओं के विभिन्न रूपों को प्रस्तुत करते हुए एक महत्वपूर्ण सत्तात्मक पद की समीक्षा की है। भूपद किसी विचार वस्तु के घटित जीवित विद्यमान अस्तित्वमान तथा होने की प्रद्योतना करता है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का इतिहास दर्शन ने संस्कृत भू शब्द का विकास अंग्रेजी बी ई से शब्द से माना है। भूत में कत प्रत्यय से भूत शब्द बनता है जो किसी हो चुके प्रघटित हो चुके कथ्य तथ्य का बोधक है। भूतकृत सत्तात्मक सत्य को ही अस आस व्यक्त करता है। किसी सत्तात्मक तत्व को ही सत्य कहते हैं। सत्य स्वयं सत्य जोड़ यत है जो सत्य सत्ता आसित का प्रमाता है। अतीत व्यतीत शब्द की मूल धातु भी ई है जिससे इति ई जोड़ ती शब्द निर्मित है। अतीत का अर्थ कालबाह्य होकर बीती हुई भूतकृत इतियों का भूत सत्ता की प्रद्योतना करता है। अतीत भी अस आस का समानार्थक है इसीलिए इतिहास का पर्यायी पद है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार अस धातु का सामान्य अर्थ होना रहना विद्यमान होना अस्तित्ववान होना अर्थात केवल सत्ता तथा गति की स्थित बोधक होता है। इस अस धातु का अस्ति सती आस आसित आदि रूप से बनता है। भारूपीय भाषाओं में अस का रूप विद्यमान है। क भारूपीय भाषा में अस डैश यस बाईयस सत्तायाम ख लिथू आनियन में एस्मी अस्तु एस्तु बराबर सत्यायाम प्राचीन पर्शियन में इस्मई अस्तु एस्तु बराबर सत्यायाम प्राचीन चर्च स्लाविक में जस्म जेस्त अर्थात सत्यायाम अवेस्ता में अस्ति अहिय अर्थात सत्यायाम ऋग्वेद में अस्ति आस आदि रूप प्राप्त होते हैं। ध्यातव्य है कि अस आस शब्द सत्ता विद्यमानता अस्तित्व तथा भूतकृत का बोधक है अर्थात इति कृति गति घटित की निश्चित है। अस्तित्व सत्ता अस आस को विद्यमानता को प्रमाणित करता है। आस उपवेशन अदादिगण की आत्मने पदी धातु है। आस्ते आसित होना था अस्तित्व या विद्यमान था। इसी आस धातु से आसन शब्द भी व्युत्पन्न होता है। उपवेशन प्रवेशन प्रक्रिया में गति क्रिया की निवृत्ति हो जाती है। आ पूर्वक अस्था धातु से था की सिद्धि होती है, जिसे भूतकृत कहा जाता है। ऋग्वेद में त्वे धर्मणा आसते यत्रामृतास आसते सुपर्णा येत आसते वर्तनम अर्थ गति निवृत्त्याद्य अर्थस्य सत्तार्थ तो सतार्थो अभिन्नत्वात् तथा भारूपीय भाषा में भी आस के रूप में प्राप्त होते हैं। क ग्रीक भाषा में अस्त होमर एति। ख अवेस्ता में अहंते अर्थात आस्ते आढ़हते अर्थात आस्ते। पाली भाषा में अच्छ बराबर अच्छति। प्राकृतिक भाषा में आस्ते आदि अस्तित्व सूचक हैं। उपर्युक्त अस आस पद से इति ह इस का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ यह है कि जो भूतकृत इतियां गतिविधियां हुई थी वह निश्चित रूप से अस्तित्व में थी। इतिहास शब्द का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ इतना स्पष्ट है कि इसके लिए किसी भी प्रकार का आग्रह पूर्वाग्रह विवाद बाद सिद्धांत को आरोपित नहीं किया जा सकता। विश्व साहित्य की शाब्दी परंपरा में इतिहास शब्द की ऐसी उत्पत्ति मूलक अक्षरात्मक व्याख्या नहीं प्राप्त होती है। अतः भारतीय इतिहास ज्ञान के लिए उसके नाभिक बिंदु इति ह आस को सर्वथा अवधार्य होना चाहिए। इतिहास शब्द का यही अमर शाश्वत अर्थ है। गति शक्ति वैदिक पद पाठकार के अनुसार इतिहास शब्द इति ह जोड़ आस के सम्मिलन से बना है। इसकी व्याख्या इति पर आसीन होना ही इतिहास है। भाष्यकार इति शब्द का अर्थ प्रायः गति करते हैं, परंतु जब इतिश्च में गतिश्च में एक साथ ही उल्लेख प्राप्त होता है उस स्थिति में यह विचारणीय हो जाता है कि दोनों इति गति में कहीं विशेष अर्थ निहित है। विश्व की संपूर्ण गतियां इतियां शक्ति पर निर्भर है। आधुनिक विज्ञान तथा प्राचीन भारतीय दर्शन दोनों यह स्वीकारते हैं कि शक्ति के अभाव में कोई गति हो ही नहीं सकती। आधुनिक विज्ञान में न्यूटन के गति का सिद्धांत अत्यधिक प्रसिद्ध है। उसका सिद्धांत है कि शक्ति वह प्रभाव है जो अचल अवस्था से चल अवस्था में कर देता है या करने का प्रयत्न करता है। उसने अपने परिणामों को गति संबंधी तीन नियमों में समाविष्ट किया है। द्वितीय नियम के अनुसार गति में परिवर्तन शक्ति पर निर्भर है। तीनों सिद्धांत अनुलिखित हैं। का शक्ति के अनुपस्थिति में गति की संभावना अल्प होती है अथवा गति समान रूप से सीधी रेखा में होती है। ख गति परिवर्तन की दर शक्ति के द्वारा निर्धारित होती है। ग दो पिंडों के मध्य गतियां प्रगतियां समान तथा विपरीत होती हैं। न्यूटन ने बताया कि दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भारतीय दर्शन की मान्यताओं को आधुनिक विज्ञान स्वीकार करता है कि विश्व में सर्वाधिक तीव्र गति सूर्य की है। सूर्य अपनी किरणों को एक सेकंड में 180,000 मील प्रक्षेपित करता है। भारतीय ऐतिह्य परंपरा में यह प्रचलित है कि सूर्य अपने सप्ताशवों के रथ पर आरूढ़ होकर त्रिविक्रम रूप में विश्व का मापन कर लेता है। सूर्य की अश्व शक्ति का ही अनुवाद अंग्रेजी भाषा में हॉर्स पावर का स्वीकार कर लिया। आधुनिक गतिमान संवहनीय संसाधनों का मात्र ज्ञान हॉर्स पावर को एक मानक के रूप में विज्ञान ने स्वीकार कर लिया। यह गति शक्ति ही विश्व के अणु परमाणु में व्याप्त है। उस शक्ति का स्वरूप क्या है इस विषय में आज विज्ञान की स्थिति डवाडोल है। इसीलिए भारतीय दर्शन में गति की प्रवर्तक शक्ति की प्रति प्रातः तमसो मा ज्योतिर्गम्य की वंदना की जाती है। शक्ति पुंज सूर्य सविता का वर्ण ही श्रेय प्रे भारत ने माना है। गति ही शक्ति है और शक्ति ही गति है। इसका विशेषण विचार इतियों गतियों के अध्ययन में किए जाने से किसी व्यष्टि समष्टि के शक्ति से निर्मित ऐतिह्य की स्पष्ट अवधारणा बनती है। गति से समर्पित इति शब्द कतिपय स्थलों पर वांछित अर्थ प्राप्ति के प्रति होने वाली मानसिक गति का सूचक है। ऋग्वेद में अन्यत्र अति मानसिक शक्ति अंतर्जगत की शक्ति के लिए इति अर्थात गति शब्द प्रयुक्त हुआ है। आ सूर्या सूर्या इव विद्यतो रथम गातत्वसेवेश प्रतीका नमसः न इत्या का उल्लेख इति को आंतरिक गति शक्ति कहा गया है। यद्यपि इति के साथ गति अर्थात बाह्य गति भी अवश्य होती है, परंतु वह इति आंतरिक गति को आगे बढ़ाने के लिए होती है। इति की परमा दिशा का नाम ही इति है। जन जन में आंतरिक गति इति ज्यों ज्यों वर्धित होती जाती है, त्यों त्यों व्यष्टि समष्टि की अधिभौतिक से आध्यात्मिक शक्ति का उत्तरोत्तर विकास होता जाता है। इस आंतरिक शक्ति के विकास द्वारा जिस विराट चेतना का आविर्भाव होता है, उसी विराट चेतना को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्रीय चीति कहा है। इस चीति चेतना में उस राष्ट्र की गतियाँ ईतियाँ शक्तियाँ निहित होती हैं जिसे उस दिक काल का इतिहास कहा जाता है। इसी इति पर आसीन आस होने की विद्या का नाम इतिहास है। इतिहास विद्या को इसीलिए शतपथ ब्राह्मणकार ने इतिहास वेद कहा है। इतिहास शब्द का विश्व में प्राचीनतम उल्लेख अथर्व वेद में हुआ है। स बृहति दिशाम अनुवय चलत ताम इतिहासश्च पुराणम च गाथाम च नारासंसी नाम चानुवय चलत इतिहास च स पुराणस्य च गाथानम च नारासंसी नाम च प्रियम धाम भवति एवं वेद अर्थात महान लक्ष्य अर्थात दिशा की ओर गतिशील भ्रति अर्थात राष्ट्र का अनुसरण इतिहास पुराण गाथा तथा नारासंसी करते हैं। तात्पर्य यह है कि आंतरिक शक्ति साधन को जो व्यक्ति समाज राष्ट्र एवं विश्व मानव के लिए उपयोगी गतियां बनाते हैं वे ही मानवीय इति आंतरिक गति शक्ति की प्रकाष्ठा ह पर आसीन आस होने के प्रयास में वास्तविक अवदान प्रदान करते हैं तथा मानव जाति की परंपरागत हाथी को आगे बढ़ाने में दक्ष होते हैं। वे व्रति व्यक्ति और राष्ट्र इतिहास का निर्माण करते हैं क्योंकि इन्हीं की बाह्य एवं आंतरिक शक्तियों की गतिविधियां इतियां अर्थात इतिहास की संज्ञा से अभिहित की जाती है। अवधेय यह है कि परिवर्तन परिणामी महत्वपूर्ण मानवीय गतिविधियां ही इतिहास संज्ञक होती हैं। उपर्युक्त इतिहास के व्युत्पत्ति मूलक अर्थ विश्लेषण से यह निष्कर्षित है कि इति शब्द निरपेक्षता एक आंतरिक गति शक्ति का बोधक है। व्रति अर्थात व्यक्ति समाज राष्ट्र इति को ग्रहण करके इयमान अर्थात गतिमान शक्तिमान कहा जाता है। इयमान व्रति इति शक्ति से संपन्न जिस महान दिशा की ओर प्रशस्त गतियां इतियां निश्चितता ह किया आस था वही इतिहास कहा जाता है। अतः गति शक्ति संपन्न राष्ट्र के जनों की इतियां गतियां शक्तियां ही इतिहास का निर्माण करती हैं। इन्हीं इतियों का अध्ययन ही इतिहास में किया जाता है। इतिहास प्रायः समाज मूलक होता है। समाज ही इतिहास का संवाहक है और समाज में सांस्कृतिक परंपरा में के रूप में चरितार्थन या क्रियान्वयन परक एक लक्ष्योन्मुखी गति इति दिखाई देती है। इतिहास शब्द का यह गति इति प्रथम आयाम है। समाप्त।